Cambridge International Examinations. International General Certificate of Secondary Education. June 2015 examination in Hindi as a second language. Paper 2, listening comprehension. Turn over now.
अभ्यास 1, प्रश्न 1 से 6. प्रश्न 1 से 6 के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद 2 बार सुनाया जाएगा.
संवाद 1.
नमस्ते बहन जी, कहाँ जाना है आपको?
जी, पुष्कर जाना है. 2 टिकट दे दीजिए.
जरूर. एयर कंडीशन बस से जाना चाहेंगी या साधारण बस से?
गर्मी बहुत है, एसी बस ही अच्छी रहेगी.
ठीक है, 1250 रुपए लगेंगे.
ये लीजिए. बस कहाँ लगी है?
11 नंबर पर, वहाँ अगली कतार के पीछे.
संवाद 2.
साहित्य प्रेमियों के लिए एक शुभ सूचना. हिंदी कथाकार भीष्म साहनी की जन्म शती के अवसर पर आज उनकी रचनाएं आधे दामों पर बेची जा रही हैं. यदि आप उनकी रचनाएं खरीदना चाहते हैं तो पुस्तक मेले के केंद्रीय हॉल में लगे भीष्म साहनी पंडाल में पधारें, जहां आप उनकी रचनाओं के साथ साथ उन पर बनी फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक भी आधे दामों पर खरीद सकते हैं.
संवाद 3.
हेलो सपना, तुम यहां कैसे?
क्यों संजीव, क्या मेरा काम पर आना मना है?
मजाक छोड़ो, क्या तुम्हें आज रश्मि के घर नहीं होना चाहिए?
अरे बाप रे, आज तो उसका जन्मदिन है, अब क्या करूं?
कुछ खास नहीं, बस टिकट कटाकर किसी दूसरे देश चली जाओ.
तुम्हें तो हर वक्त मजाक करने की सूझती है.
नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि वो शादी की सालगिरह मना रही है, जन्मदिन नहीं.
संवाद 4.
भारतीय फुटबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों वाले विश्व कप को कामयाब बनाने के लिए काफी संजीदा है. चोपड़ा ने कहा कि 2017 में होने वाले इस विश्व कप के लिए फीफा अधिकारियों ने 3,80,00,000 डॉलर का बजट रखा है. भारतीय राज्य गोवा ने विश्व कप के फाइनल की मेजबानी की इच्छा जताई है.
संवाद 5.
नमस्कार, मराठा मंदिर, कहिए क्या सेवा करूं?
नमस्कार, क्या आज रात के शो के टिकट मिल सकते हैं?
प्रथम श्रेणी और बालकनी के कुछ टिकट बचे हैं, कितने चाहिए आपको?
प्रथम श्रेणी के 2. दाहिने कोने की सीटें दे सकें तो अच्छा होगा.
दाहिने और बाएं कोने की सीटें तो भर चुकी हैं, बीच के गलियारे की सीटें बुक कर सकता हूं?
जी, कर दीजिए. धन्यवाद.
संवाद 6.
यात्री कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 से रवाना हो रही है. लखनऊ से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस तकनीकी गड़बड़ी के कारण आधे घंटे के विलंब से चल रही है. पुणे से आने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म 10 पर आ रही है। जयपुर से होकर अजमेर जाने वाली पिंक सिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म 4 से रवाना होगी।
अभ्यास एक के इन संवादों को अब आप फिर से सुनेंगे।
संवाद एक।
नमस्ते बहन जी, कहाँ जाना है आपको?
जी, पुष्कर जाना है। 2 टिकट दे दीजिए।
जरूर। एयर कंडीशन बस से जाना चाहेंगी या साधारण बस से?
गर्मी बहुत है, एसी बस ही अच्छी रहेगी।
ठीक है, 1250 रुपए लगेंगे।
ये लीजिए। बस कहाँ लगी है?
11 नंबर पर, वहाँ अगली कतार के पीछे।
संवाद 2।
साहित्य प्रेमियों के लिए एक शुभ सूचना। हिंदी कथाकार भीष्म साहनी की जन्म शती के अवसर पर आज उनकी रचनाएं आधे दामों पर बेची जा रही हैं। यदि आप उनकी रचनाएं खरीदना चाहते हैं तो पुस्तक मेले के केंद्रीय हॉल में लगे भीष्म साहनी पंडाल में पधारें, जहां आप उनकी रचनाओं के साथ साथ उन पर बनी फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक भी आधे दामों पर खरीद सकते हैं।
संवाद 3।
हेलो सपना, तुम यहां कैसे?
क्यों संजीव, क्या मेरा काम पर आना मना है?
मजाक छोड़ो, क्या तुम्हें आज रश्मि के घर नहीं होना चाहिए?
अरे बाप रे, आज तो उसका जन्मदिन है, अब क्या करूं?
कुछ खास नहीं, बस टिकट कटाकर किसी दूसरे देश चली जाओ।
तुम्हें तो हर वक्त मजाक करने की सूझती है।
नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि वो शादी की सालगिरह मना रही है, जन्मदिन नहीं।
संवाद 4।
भारतीय फुटबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा 17 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों वाले विश्व कप को कामयाब बनाने के लिए काफी संजीदा है। चोपड़ा ने कहा कि 2017 में होने वाले इस विश्व कप के लिए फीफा अधिकारियों ने 3,80,00,000 डॉलर का बजट रखा है। भारतीय राज्य गोवा ने विश्व कप के फाइनल की मेजबानी की इच्छा जताई है।
संवाद 5।
नमस्कार, मराठा मंदिर, कहिए क्या सेवा करूं?
नमस्कार, क्या आज रात के शो के टिकट मिल सकते हैं?
प्रथम श्रेणी और बालकनी के कुछ टिकट बचे हैं, कितने चाहिए आपको?
प्रथम श्रेणी के 2, दाहिने कोने की सीटें दे सकें तो अच्छा होगा।
दाहिने और बाएं कोने की सीटें तो भर चुकी हैं, बीच के गलियारी की सीटें बुक कर सकता हूं?
जी, कर दीजिए, धन्यवाद।
संवाद 6।
यात्री कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 1 से रवाना हो रही है। लखनऊ से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस तकनीकी गड़बड़ी के कारण आधे घंटे के विलंब से चल रही है। पुणे से आने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म 10 पर आ रही है। जयपुर से होकर अजमेर जाने वाली पिंक सिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म 4 से रवाना होगी।
ये अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास दो, प्रश्न सात। सियालकोट के उद्योग एवं वाणिज्य संघ की अध्यक्षा सलमा बशीर के साथ खेल संवाददाता कमर अहमद की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों को भरिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
सलमा जी, खेल और व्यापार परिचर्चा में आपका स्वागत है।
शुक्रिया कमर साहब।
सलमा जी, सुना है कि पाकिस्तान के सियालकोट शहर ने पिछले साल के फुटबॉल विश्व कप में एक अहम भूमिका निभाई थी। क्या भूमिका थी ये?
कमर साहब, आपको पिछले साल के विश्व कप में इस्तेमाल की गई फुटबॉल की गेंद याद है?
जी हाँ, बड़ी ही खूबसूरत थी वो गेंद। हमें भी मिली थी निशानी के तौर पर। शायद ब्राजूका नाम रखा गया था उसका।
जी हाँ, पुर्तगाली में ब्राजील के लोगों की जीवन शैली को ब्राजूका भी कहा जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने इसके लिए ब्राजूका नाम चुना था। और ये ब्राजूका गेंदें सियालकोट की कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने बनाई थी।
परंतु सलमा जी, ब्राजूका गेंद पर नाम तो एडिडास कंपनी का छपा है।
वो इसलिए क्योंकि एडिडास फीफा विश्व कप की प्रायोजक कंपनी है, इसलिए विश्व कप की गेंद पर उसका नाम छपना तो स्वाभाविक है। लेकिन एडिडास ने ये गेंदें फॉरवर्ड स्पोर्ट्स से बनवाई थी।
लेकिन मैंने सुना है एडिडास तो चीन की किसी कंपनी से फुटबॉल बनवाती रही है। पिछली बार उसने ये काम पाकिस्तान की कंपनी को कैसे दे दिया?
आपने बिल्कुल ठीक सुना है। चीन कई दशकों से एडिडास के लिए फुटबॉल की गेंदें बनाता आ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप की गेंद चीन में ही बनी थी, लेकिन चीन में मजदूरी बढ़ जाने की वजह से एडिडास ने पिछली बार यह ठेका पाकिस्तानी कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स को दिया। वैसे भी एडिडास को 6 करोड़ गेंदें बनवानी थी और यह काम चीन की कंपनियां जल्दबाजी में करने के लिए तैयार नहीं थी।
तो फिर सियालकोट की कंपनी इतना माल इतनी जल्दी बनाने के लिए कैसे तैयार हो गई? वहां तो फुटबॉल हाथ से बनाए जाते थे।
इसीलिए तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने इसे राष्ट्रीय गौरव की बात मानते हुए समय पर गेंदें तैयार करने के लिए रातों रात आधुनिक मशीनें लगा ली और माल तैयार कर दिया।
लेकिन भारत के शहर जालंधर में तो फुटबॉल बनाने का काम चीन की तरह मशीनों से ही होता है, फिर वहां की कंपनियों को ये ठेका क्यों नहीं मिला?
लगता है कि भारत के निर्माता कच्चे माल और कुशल मजदूरों की कमी की वजह से मार खा गए। सुस्त सरकारी तंत्र भी एक कारण रहा होगा, लेकिन एडिडास को माल जल्दी चाहिए था।
तो जालंधर के फुटबॉल निर्माता अब क्या करेंगे?
उनको सियालकोट के निर्माताओं से मुकाबला करना पड़ेगा। वैसे उनके पास भी काम की कोई कमी नहीं है। फुटबॉल गेंदों के खोल बनाने में भले ही सियालकोट ने बाजी मार ली हो, लेकिन गेंदों के ब्लैडर अब भी जालंधर में ही बनते हैं।
सलमा जी, विश्व कप फुटबॉल की गेंद के निर्माण के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी शुक्रिया। अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
सलमा जी, खेल और व्यापार परिचर्चा में आपका स्वागत है।
शुक्रिया कमर साहब।
सलमा जी, सुना है कि पाकिस्तान के सियालकोट शहर ने पिछले साल के फुटबॉल विश्व कप में एक अहम भूमिका निभाई थी, क्या भूमिका थी ये?
कमर साहब, आपको पिछले साल के विश्व कप में इस्तेमाल की गई फुटबॉल की गेंद याद है?
जी हाँ, बड़ी ही खूबसूरत थी वो गेंद, हमें भी मिली थी निशानी के तौर पर, शायद ब्राजूका नाम रखा गया था उसका।
जी हाँ, पुर्तगाली में ब्राजील के लोगों की जीवन शैली को ब्राजूका भी कहा जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने इसके लिए ब्राजूका नाम चुना था। और ये ब्राजूका गेंदे सियालकोट की कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने बनाई थी।
परंतु सलमा जी, ब्राजूका गेंद पर नाम तो एडिडास कंपनी का छपा है।
वो इसलिए क्योंकि एडिडास फीफा विश्व कप की प्रायोजक कंपनी है, इसलिए विश्व कप की गेंद पर उसका नाम छपना तो स्वाभाविक है, लेकिन एडिडास ने ये गेंदे फॉरवर्ड स्पोर्ट्स से बनवाई थी।
लेकिन मैंने सुना है एडिडास तो चीन की किसी कंपनी से फुटबॉल बनवाती रही है, पिछली बार उसने ये काम पाकिस्तान की कंपनी को कैसे दे दिया?
आपने बिल्कुल ठीक सुना है, चीन कई दशकों से एडिडास के लिए फुटबॉल की गेंदें बनाता आ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप की गेंद चीन में ही बनी थी, लेकिन चीन में मजदूरी बढ़ जाने की वजह से एडिडास ने पिछली बार यह ठेका पाकिस्तानी कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स को दिया। वैसे भी एडिडास को 6 करोड़ गेंदें बनवानी थी और यह काम चीन की कंपनियां जल्दबाजी में करने के लिए तैयार नहीं थी।
तो फिर सियालकोट की कंपनी इतना माल इतनी जल्दी बनाने के लिए कैसे तैयार हो गई? वहां तो फुटबॉल हाथ से बनाए जाते थे।
इसीलिए तो फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने इसे राष्ट्रीय गौरव की बात मानते हुए समय पर गेंदे तैयार करने के लिए रातों रात आधुनिक मशीनें लगा ली और माल तैयार कर दिया।
लेकिन भारत के शहर जालंधर में तो फुटबॉल बनाने का काम चीन की तरह मशीनों से ही होता है, फिर वहां की कंपनियों को ये ठेका क्यों नहीं मिला?
लगता है कि भारत के निर्माता कच्चे माल और कुशल मजदूरों की कमी की वजह से मार खा गए। सुस्त सरकारी तंत्र भी एक कारण रहा होगा, लेकिन एडिडास को माल जल्दी चाहिए था।
तो जालंधर के फुटबॉल निर्माता अब क्या करेंगे?
उनको सियालकोट के निर्माताओं से मुकाबला करना पड़ेगा। वैसे उनके पास भी काम की कोई कमी नहीं है, फुटबॉल गेंदों के खोल बनाने में भले ही सियालकोट ने बाजी मार ली हो, लेकिन गेंदों के ब्लैडर अब भी जालंधर में ही बनते हैं।
सलमा जी, विश्व कप फुटबॉल की गेंद के निर्माण के बारे में इतनी दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी शुक्रिया। अभ्यास 2 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 3 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 3 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 3 प्रश्न 8 से 13। केरल की पत्रकार मालती नटराजन के साथ चौपाल के संयोजक भानु भारती की बातचीत को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाकर दीजिए। ये बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी। मालती नटराजन जी, आज की चौपाल में आपका स्वागत है।
धन्यवाद भानु जी।
मालती जी, सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए पिछले 2 दशकों में आप केरल के हजारों दिलचस्प लोगों से मिल चुके हैं। चौपाल में आज हमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिसके काम ने आपके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी हो।
भानु जी, वैसे तो बहुत से दिलचस्प लोगों से मिलना हुआ है, लेकिन 2 साल पहले मैं केरल के एक छोटे से गांव में अब्दुल मलिक नाम के एक अध्यापक से मिली थी, जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊंगी।
क्यों मालती जी, ऐसी क्या विशेषता थी अब्दुल मलिक साहब में?
अब्दुल मलिक केरल के एक छोटे से गांव में रहते हैं जो कडलुंडी नदी के किनारे बसा है, लेकिन उनका स्कूल नदी के दूसरे छोर पर एक कस्बे में है जहां वे गणित पढ़ाते हैं। नदी पर आसपास कोई पुल नहीं है, इसलिए वे स्कूल जाने के लिए रोज तैरकर नदी पार करते हैं और पिछले 20 साल से ऐसा करते आ रहे हैं। वे कभी छुट्टी भी नहीं लेते और हमेशा समय पर स्कूल पहुंचते हैं।
कमाल की कर्मनिष्ठा है अब्दुल मलिक साहब की। लेकिन मालती जी, केरल को तो भारत के बेहतर राज्यों में गिना जाता है, क्या वाकई उनके गांव से स्कूल तक जाने का कोई और साधन नहीं है?
नहीं, साधन तो है, सड़क है और बसें भी चलती हैं, लेकिन बसें 7 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर कस्बे तक पहुंचती हैं और बदलनी भी पड़ती हैं, इसलिए बस से स्कूल जाने में पैदल और तैर कर जाने के बजाय 4 गुना समय लगता है।
ये नदी है कितनी चौड़ी, क्या बाढ़ के समय पार करने में उन्हें डर नहीं लगता?
अब्दुल मलिक साहब का कहना था कि उन्हें तो नहीं, लेकिन शुरू में उनके परिवार को अवश्य डर लगा था, क्योंकि कडलुंडी केरल की एक विशाल नदी मानी जाती है और उसकी धारा की चौड़ाई लगभग 70 मीटर है, लेकिन तैर कर जाना रोज का काम हो जाने के कारण अब सबको इसकी आदत सी पड़ गई है।
तैर कर नदी पार करते समय वे अपने कपड़ों और किताबों को कैसे ले जाते हैं?
उन्होंने बताया कि घर से तो वे धोती और कमीज पहनकर स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन साथ में एक थैले में एक तौलिया, किताबें, छाता और टायर की एक ट्यूब रखते हैं। नदी पर पहुंचते ही वे अपनी धोती, कमीज और जूते उतारकर थैले में रख लेते हैं और तौलिया लपेटकर पानी में उतर जाते हैं। टायर की ट्यूब को फुलाकर उसे कमर में पहन लेते हैं और थैले को सिर पर रखकर तैरते हुए नदी पार करते हैं।
क्या आपने उनसे पूछा कि इतनी सारी कठिनाइयों के होते हुए उन्होंने अध्यापन को ही पेशा क्यों बनाया?
जी हाँ, उनका कहना था कि वे बचपन से ही शिक्षक बनना चाहते थे, क्योंकि शिक्षा हमें बच्चों का आदर्श बनने और एक अच्छा नागरिक बनने में सक्षम बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल मलिक के गांव को शिक्षकों का गांव कहा जाता है, क्योंकि उस गांव में ज्यादातर लोग शिक्षक ही हैं।
शायद अब्दुल मलिक जैसे आदर्श शिक्षकों की कार्य निष्ठा के बल पर ही शिक्षा के मामले में केरल भारत के सब राज्यों से आगे रहा है। मालती जी, इस प्रेरणादायक प्रसंग को सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद भानु जी।
अभ्यास 3 की ये बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। मालती नटराजन जी, आज की चौपाल में आपका स्वागत है।
धन्यवाद भानु जी।
मालती जी, सामाजिक मुद्दों पर लिखने के लिए पिछले 2 दशकों में आप केरल के हजारों दिलचस्प लोगों से मिल चुके हैं। चौपाल में आज हमें किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिसके काम ने आपके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी हो।
भानु जी, वैसे तो बहुत से दिलचस्प लोगों से मिलना हुआ है, लेकिन 2 साल पहले मैं केरल के एक छोटे से गांव में अब्दुल मलिक नाम के एक अध्यापक से मिली थी, जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊंगी।
क्यों मालती जी, ऐसी क्या विशेषता थी अब्दुल मलिक साहब में?
अब्दुल मलिक केरल के एक छोटे से गांव में रहते हैं जो कडलुंडी नदी के किनारे बसा है, लेकिन उनका स्कूल नदी के दूसरे छोर पर एक कस्बे में है, जहां वे गणित पढ़ाते हैं। नदी पर आसपास कोई पुल नहीं है, इसलिए वे स्कूल जाने के लिए रोज तैर कर नदी पार करते हैं और पिछले 20 साल से ऐसा करते आ रहे हैं। वे कभी छुट्टी भी नहीं लेते और हमेशा समय पर स्कूल पहुंचते हैं।
कमाल की कर्मनिष्ठा है अब्दुल मलिक साहब की। लेकिन मालती जी, केरल को तो भारत के बेहतर राज्यों में गिना जाता है, क्या वाकई उनके गांव से स्कूल तक जाने का कोई और साधन नहीं है?
नहीं, साधन तो है, सड़क है और बसें भी चलती हैं, लेकिन बसें 7 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर कस्बे तक पहुंचती हैं और बदलनी भी पड़ती हैं, इसलिए बस से स्कूल जाने में पैदल और तैर कर जाने के बजाय 4 गुना समय लगता है।
ये नदी है कितनी चौड़ी? क्या बाढ़ के समय पार करने में उन्हें डर नहीं लगता?
अब्दुल मलिक साहब का कहना था कि उन्हें तो नहीं, लेकिन शुरू में उनके परिवार को अवश्य डर लगा था, क्योंकि कडलुंडी केरल की एक विशाल नदी मानी जाती है और उसकी धारा की चौड़ाई लगभग 70 मीटर है, लेकिन तैर कर जाना रोज का काम हो जाने के कारण अब सबको इसकी आदत सी पड़ गई है।
तैर कर नदी पार करते समय वे अपने कपड़ों और किताबों को कैसे ले जाते हैं?
उन्होंने बताया कि घर से तो वे धोती और कमीज पहनकर स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन साथ में एक थैले में एक तौलिया, किताबें, छाता और टायर की एक ट्यूब रखते हैं। नदी पर पहुंचते ही वे अपनी धोती, कमीज और जूते उतारकर थैले में रख लेते हैं और तौलिया लपेटकर पानी में उतर जाते हैं। टायर की ट्यूब को फुलाकर उसे कमर में पहन लेते हैं और थैले को सिर पर रखकर तैरते हुए नदी पार करते हैं।
क्या आपने उनसे पूछा कि इतनी सारी कठिनाइयों के होते हुए उन्होंने अध्यापन को ही पेशा क्यों बनाया?
जी हाँ, उनका कहना था कि वे बचपन से ही शिक्षक बनना चाहते थे, क्योंकि शिक्षा हमें बच्चों का आदर्श बनने और एक अच्छा नागरिक बनने में सक्षम बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल मलिक के गांव को शिक्षकों का गांव कहा जाता है, क्योंकि उस गांव में ज्यादातर लोग शिक्षक ही हैं।
शायद अब्दुल मलिक जैसे आदर्श शिक्षकों की कार्य निष्ठा के बल पर ही शिक्षा के मामले में केरल भारत के सब राज्यों से आगे रहा है। मालती जी, इस प्रेरणादायक प्रसंग को सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद भानु जी।
अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4, प्रश्न 14 से 20। जानकारी बनाम ज्ञान पर शिक्षा शास्त्री और दार्शनिक बुद्धिनाथ मिश्र के विचारों को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये विचार आपको 2 बार सुनाए जाएंगे।
नमस्कार, मैं हूं बुद्धिनाथ मिश्र। ये ज्ञान और विज्ञान के विस्फोट का युग है। आप आराम से घर पर बैठे आनन फानन में एक बटन दबाते ही इंटरनेट के किसी भी विषय की मनचाही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय जाने, वहां से किताब छांटने और उनमें से जानकारी जुटाकर अपने विषय के नोट बनाने की भला आप क्या जरूरत है? सब कुछ कितना सुलभ और सुविधाजनक हो गया है। पकी पकाई जानकारी मिल जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यही तो विकास है। सवाल यह है कि क्या जानकारी प्राप्त कर लेना ही ज्ञान प्राप्त करना है? कभी अच्छे शिक्षकों की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पुस्तकालय से पुस्तकें ढूंढने का, उनमें से जरूरी पुस्तकें छांटने का, उन्हें पढ़कर खुद अपने नोट्स बनाने और उन पर गर्व करने का भी अपना आनंद होता था। रस्किन ने कहा था कि शब्दों के पत्थर तोड़कर गहराई में छिपे ज्ञान को प्राप्त करना ही विद्वान का लक्षण है। पर आज ये जहमत कौन उठाता है? हालत ये हो चुकी है कि कुछ लोग न तो अच्छे शिक्षकों की बात करते हैं और न ही ये जरूरी मानते हैं कि अच्छे शिक्षकों का पढ़ाना विषयों में दिलचस्पी पैदा करता है। आप जो लिखेंगे उस पर आपको नंबर मिलेंगे। शिक्षकों से क्या अच्छे नंबर पाना ही चरम लक्ष्य बन गया है? बस यही व्यावहारिक सोच नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही है। बुद्धि, सोच, गहराई और डूब कर बोलने और लिखने की कला अपवाद स्वरूप ही नजर आती है। ऐसे लोगों के लिए पढ़ना, सोचना और मंथन करना तो मानो समय नष्ट करना है। आज के युवकों की तो मानो जिज्ञासा ही समाप्त हो गई है। सिर्फ सफलता ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, फिर वो जैसे भी मिले। वे आराम से घर में बैठे जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं। अध्ययन और चिंतन की वैज्ञानिक परंपरा या तो समाप्त हो गई है या फिर समाप्ति के कगार पर है। ऐसे लोगों के लिए जो हर कीमत पर और जैसे तैसे तरक्की करने में विश्वास करते हैं, इंटरनेट ने एक नया रास्ता खोल दिया है। ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी पहले के लोगों से कम बुद्धिमान है। जानकारी के मामले में तो वो पहले के लोगों से बहुत आगे है। कमी है तो सिर्फ समझदारी की। वो अनेक राहों में से सही राह चुन तो लेती है, पर उसने ऐसा किस आधार पर और क्यों किया, ये सोच विचार वो नहीं कर पाती। जबकि सही उत्तर देना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है सही तरीके और सही भाषा में उत्तर देना। इस तथ्य की अनदेखी हो रही है। दोष नई पीढ़ी का नहीं है, दोष उस व्यवस्था का है जिसमें वो पल बढ़कर बड़ी हो रही है। आखिर कंप्यूटर में भी जानकारी भरने वाला मनुष्य ही है। पर अब चूंकि इंतजार करने का जमाना नहीं है, इसलिए त्वरित जानकारी का महत्व बढ़ गया है। आगे बढ़ने की होड़ में सभी दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में तेजी से दौड़े जा रहे हैं। उन्हें ये भी होश नहीं है कि पैर मजबूती से जमीन पर होने चाहिए, वरना वे लड़खड़ाकर गिर पड़ेंगे। धन्यवाद।
अभ्यास चार के ये विचार अब आप फिर से सुनेंगे।
नमस्कार, मैं हूं बुद्धिनाद मिश्र। ये ज्ञान और विज्ञान के विस्फोट का युग है। आप आराम से घर पर बैठे आनन फानन में एक बटन दबाते ही इंटरनेट के किसी भी विषय की मनचाही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय जाने, वहां से किताब छांटने और उनमें से जानकारी जुटाकर अपने विषय के नोट बनाने की भला आप क्या जरूरत है? सब कुछ कितना सुलभ और सुविधाजनक हो गया है। पकी पकाई जानकारी मिल जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यही तो विकास है। सवाल यह है कि क्या जानकारी प्राप्त कर लेना ही ज्ञान प्राप्त करना है? कभी अच्छे शिक्षकों की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पुस्तकालय से पुस्तकें ढूंढने का, उनमें से जरूरी पुस्तकें छांटने का, उन्हें पढ़कर खुद अपने नोट्स बनाने और उन पर गर्व करने का भी अपना आनंद होता था। रस्किन ने कहा था कि शब्दों के पत्थर तोड़कर गहराई में छिपे ज्ञान को प्राप्त करना ही विद्वान का लक्षण है। पर आज ये जहमत कौन उठाता है? हालत ये हो चुकी है कि कुछ लोग न तो अच्छे शिक्षकों की बात करते हैं और न ही ये जरूरी मानते हैं कि अच्छे शिक्षकों का पढ़ाना विषयों में दिलचस्पी पैदा करता है। आप जो लिखेंगे उस पर आपको नंबर मिलेंगे। शिक्षकों से क्या, अच्छे नंबर पाना ही चरम लक्ष्य बन गया है। बस यही व्यावहारिक सोच नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही है। बुद्धि, सोच, गहराई और डूबकर बोलने और लिखने की कला अपवाद स्वरूप ही नजर आती है। ऐसे लोगों के लिए पढ़ना, सोचना और मंथन करना तो मानो समय नष्ट करना है। आज के युवकों की तो मानो जिज्ञासा ही समाप्त हो गई है। सिर्फ सफलता ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, फिर वो जैसे भी मिले। वे आराम से घर में बैठे जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं। अध्ययन और चिंतन की वैज्ञानिक परंपरा या तो समाप्त हो गई है या फिर समाप्ति के कगार पर है। ऐसे लोगों के लिए जो हर कीमत पर और जैसे तैसे तरक्की करने में विश्वास करते हैं, इंटरनेट ने एक नया रास्ता खोल दिया है। ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी पहले के लोगों से कम बुद्धिमान है। जानकारी के मामले में तो वो पहले के लोगों से बहुत आगे है। कमी है तो सिर्फ समझदारी की। वो अनेक राहों में से सही राह चुन तो लेती है, पर उसने ऐसा किस आधार पर और क्यों किया, ये सोच विचार वो नहीं कर पाती। जबकि सही उत्तर देना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है सही तरीके और सही भाषा में उत्तर देना। इस तथ्य की अनदेखी हो रही है। दोष नई पीढ़ी का नहीं है, दोष उस व्यवस्था का है जिसमें वो पल बढ़कर बड़ी हो रही है। आखिर कंप्यूटर में भी जानकारी भरने वाला मनुष्य ही है। पर अब चूंकि इंतजार करने का जमाना नहीं है, इसलिए त्वरित जानकारी का महत्व बढ़ गया है। आगे बढ़ने की होड़ में सभी दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में तेजी से दौड़े जा रहे हैं। उन्हें ये भी होश नहीं है कि पैर मजबूती से जमीन पर होने चाहिए, वरना वे लड़खड़ाकर गिर पड़ेंगे। धन्यवाद।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
दिस इज द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन।